चौथा एक प्रधान था, वो कहने लगा ये करते हैं खाद ये होता है कचरे, अब कौन पूछे उसकी पेश है कि तुम क्या कहते ठीक है ना। तो इसी तरह से अनुदान नीम है, इसके जितने मानो विक्रो कर सकते हैं, कोई कहेगा रब के माने किए हैं, राम के माने किए हैं, नीम के माने किए हैं, मगर इसके लिए उसको पेश करें। ख्याली एक माने होते हैं, एक होती है सनद, तो अलग जो है ये तस्वीरी जुबान में अलग के माने हैं गाय या बैल। और लाम जो है ये वो छड़ी का नाम है जिसके साथ बैल को हाँका जाता है, उसकी शक्ल देखती है, अंग्रेजी में उलट है, उर्दू में स्त्री है, मगर ये है वो छड़ी जिसके साथ उसको हाँका जाता है। ये मीन जो है ये है पानी पीला, गाय है जिसको सिदाया जाता है खेत पालने के लिए और पानी देने के लिए, अल्पलाम ये तो हो गया गया जुबान का एक पदमा। जो लोग अपने तौर पर करेंगे उनके पास गुण को नहीं अपना अपना ख्याल होगा। अच्छा इसी तरह से हमारी जमात जो है या जो तंदीर जो है या और बात लोगों ने इसका पदमा किया अन अल्लाह हो आलम, मैं अल्लाह बहुत जानने वाला हूँ, खूब जानने वाला हूँ, मगर इसके लिए कोई सनद चाहिए। तो इसके लिए सनद दर्शन मैंने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो गया एक सनद है कि जुबान पीछे से जुबान बनी थी श्रेष्ठ। तो जुबान के दो तरीके हैं, एक है बोलना और एक है लिखना। बोलने में आदमी जो था वो इशारे से भी काम देता था, लिखने में भी उसकी तस्वीर बनाकर देख देते थे। जब दूसरी जगह किसी को कोई जरूरत होती थी उस चीज की तस्वीर बनाकर भेज देते थे, तो सब प्रसाद कहने वाले थे। तो जब गाय की तस्वीर बनाकर भेजते थे तो अगला समझता था कि खेती बाड़ी का वक्त आ गया, जमीन के हाल चलाने का पानी देने का वक्त आ गया, उसको देखकर अपना काम शुरू कर देते। अच्छा अब आप पूरी गाय बनाते थे, उन्हें कहा ये तो बड़ी मुसीबत है, गाय पिलाओ फिर आगे कुछ और पिलाओ फिर आओ, तो बड़ा वक्त लगता है और खर्च भी होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं गाय का सिर्फ सारी गाय मत बनाओ फिर रख दो, तो फिर से रखने लगे। कुछ देर के बाद में कहा सिर नहीं उसके दो सींग रख दो, ये ए जो है ये गाय के दो सींग अंग्रेजी में जिससे बाद वालों ने स्त्रे है बाद में स्त्रे है मगर है वो ही है। अरब वाले जो थे उन्होंने कहा दो सी भी नहीं एक सी तो एक ही रखो, तो ये अलग वाली था। असल क्या था, असल पूरी गाय थी मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका सिर रह गया, फिर दो सी रह गया, फिर एक रह, तो ये गया अलग जो है इसके माने हैं गाय या बैल। मगर ये इशारा किस चीज का है, निशान किस चीज का है, कल्चर जमीन खोदने का और इसके कोई आप बीज डालने का वक्त आ गया, ये उसका निशान। अब कल्चर कई तरह का होता है क्योंकि ये एक ही सूर्य के पहले नहीं आते, ये सूर्य का नाम तो बकरा है ना, तो अलग के माने बकरा ही हो गया ना, गाय हो गया ना, तो जो नाम उसका है वो इकबाल फलाम जी ने बता दिया। बाद लोग तस्वीर लिखने वाले को ये कहते हैं कि सूर्य का नाम बकरा इसलिए है कि बनी इसराइल को इस सूर्य में हुक्म दिया गया था इस काल अबूसा ले कौ में भी नया मुकुम अंतल बहु बकरा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला हुक्म देता है बकरा को गाय को निभा कर उसकी वजह से इसका नाम है। मैं कहता हूं नहीं, बल्कि सारी सूर्य का जो नाम है वो बकरा है और उसके माने कल्चर है। कल्चर दो तरह का होता है, एक कल्चर है जमीन को खोदना बीज डालना और उसमें जो है जीवन को आगे उतना पैदा करना, एक कल्चर होता है जमीन का। इंसान अपने दिमाग को खोदता है, सोच सोच कर नई बातें निकालता है, ये दिमाग का कल्चर है। जितना आप सोचेंगे उतने ही ज्यादा आपका दिमाग जो है डिवेलप होगा, उसी तरह से जिससे जमीन में से खेती निकलती है इसी तरह से ख्याल इंसान के दिमाग में सोचने से ज्यादा आते चले जाते हैं। तो गोया एक कुरान शरीफ जो है ये इंसान की जमीर को खोदने के लिए उसके अंदर बीज डालने के लिए आगे तरक्की देने के लिए आया, हो गया ना मजमून का जो पता लग गया ना। आप छह सूरतों के पहले यही लफाते हैं, अब इसका भी अलग्रामीन है, आगे आगे इसका नाम भी अलग्रामीन है, फिर आए एक और सूरत आएगी इसका नाम भी अलग्रामीन है। तो आपका तो ये कल्चर की किस्में, एक कल्चर की किस्म ये है जमीन को खोद कर बीज डालना, एक कल्चर की किस्म ये है कि जानवरों को एक कल्चर ये है
कि जानवरों को गौर करना उनके ऊपर के किस जानवर से कौन सा काम ले सकते हैं, उसको क्या क्या सिखा सकते हैं, ये भी तो कल्चरल है। तो एक पीड़ित का नाम अगर ये हो तो इसका मतलब ये कि जानवरों से भी एक इलम पैदा होता है, उसके ऊपर गौर करो, उनसे काम लो। इसी तरह से एक कल्चर ये है कि इंसान को ख्वाब आता है, ये ख्वाब जो है ये भी एक इलम है कि एक इंसान देखता कुछ है मगर आगे उसकी ताबीर दूसरी होती है। ये भी एक कल्चर है कि उसको समझ लेना। एक आदमी जो था उसने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा, बीमार था, उन्हें ख्वाब में देखा दो नून। तो वो बड़ा हैरान हुआ दो नून का क्या मतलब है। तो वो एक आलम के पास गया जो ताबीर जानता था ख्वाबों की। उसने कहा देखो दो नून से मुराद है ये क्या नाम इसका जैतून, ला शर्कियतिन वला गर्बियतिन, दो दफा ला उसमें आता है ना। तो उसने कहा कि ये वो चीज है, तुम इसको इस्तेमाल करो। उसने जैतून इस्तेमाल किया आराम आ गया। तब दोनों से मुराद उसकी क्या थी, वो जैतून का दर। तो इस तरह से गया, ये एक इल्म है जो ख्वाब का होता है कि देखता आदमी कुछ है मतलब उसका कुछ और होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम देखा चांद और सूर्य मुझे सीधा कर रहे हैं, तो अब उसकी ताबीर ये नहीं कि वाकई चांद और सूर्य इसको सीधा करे, बल्कि बात मतलब ये है, बाद लोग इसका तर्जमा करते हैं कि माँ बाप इसको सीधा करेंगे, ये बात गलत है और बेअदबी की। इसलिए कि एक आदमी को माँ बाप सीधा करें तो उसकी इज्जत नहीं समझो, उसकी बेअदबी है। वो उनको कहता मुझे सीधा करो ये बैठा रहता है, बल्कि उसका मतलब ये है कि मुल्क का बादशाह और वजीर दोनों उसको सीधा करेंगे, उसकी फरमाबरदारी करें। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मिस्र के बादशाह और मिस्र का वजीर जो था दोनों ने गोया उनकी मुताबिक की फरमाबरदारी, तो ये गोया उसका पदमा निकला। तो इस तरह से गोया ये ख्वाब जो है ये भी गोया एक इल्म है, इस पर जो जो आप गौर करें ये भी एक इल्म आदत है। तो जहां अलिफ लाम रा आता है वो गोया उससे मुराद है ख्वाबों के इल्म का कल्चर, उसके जरिए से आगे गोया तहकीकात करनी, बातें निकालनी वगैरह। तो ये कुरान शरीफ में अलिफ लाम मीम जो है, तो मैंने आपको बताया कि ये हरफ जो है ये 700 जुबानों में तीन तरह के हैं, एक फोनेटिक है, एक आइडियोलॉजी है जैसे अरबी उर्दू में है अलिफ लाम, और एक होते हैं तो स्वीर शरीर बना दें। मिसर में आप कभी जाएं तो पुराने जमाने की जितनी बातें हैं वो सब तस्वीरों में जाहिर की हैं। आप होटलों में बैठे हुए होंगे वहां दीवार पर तस्वीरें बनी हुई होगी, आप समझते जाएंगे किससे ये मतलब कैसे ये मतलब। या चीन में 500 हर्फ हैं, हमारी जुबान के हर्फ के तो बाहर 26 पर 18 पर खत्म हो जाते हैं, उनके 500 हैं। मगर 500 क्या है कि हर हरफ जो है उसकी एक तस्वीर, तो वो गया और तस्वीर के जरिए से तो सारी जुबान बन गई। तो ये अलिफ लाम मीम का तर्जमा जो है वो ये याद रखना चाहिए कि इसकी सनद जो है वो जुबान है, कि जुबान किस तरह से बने। और वो अलिफ लाम मीम के माने वही होंगे जो अल बकरा के माने गाय, गाय है। और इसका कुरान शरीफ ने आगे बता दिया उसका कि उन्होंने पूछा कि माँ हया को कौन सी गाय है जिसके मुतालिक आप हुक्म देते हैं कि जिदा करो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना बकरा तुम मुसलमत लाशिया तफी है, वो गाय है कि जो लोटी ताजी है, किसी उससे कोई काम नहीं लिया जाता, ना खेत फाड़ने का ना पानी देने का। तो बता दिया कि गाय का काम क्या है, खेत फाड़ना और पानी देना, ये बता दिया उसने। बाकी ये सारी सूरज जो है जैसे मैंने बताया कि कल्चर दो तरह का है, ये सारे गया रूहानी ये जमीर का कल्चर है जिसके लिए कुरान मजीद नाज़िल किया जा रहा है। इसके जरिए से इंसान का जमीर जो है वो रोशन होगा और आगे तरक्की करेगा। कल्चर जो है लफ्ज ये कल्ट से या टू डिंग से आता है खोजना, कल्चर तो कोई चीज खोदी जाए तो उसमें से आगे चीज निकल आती है। जमीन खोदो तो जमीन में से पौधा निकल आता है, दिमाग खोदो तो उसमें से आगे ख्यालात निकलते हैं। दो तरह के ख्यालात होते हैं, आदमी जो ख्याल करता है, एक लिखना ख्याल है और एक ख्याल करना भी, ये भी गोया एक किस्म का जुबान है। जब आप किसी बात का ख्याल करते हैं वो मौजूद होता है, उसके अजा होते हैं। मगर आप किस जुबान में ख्याल करते हैं, जो भी होगी आपकी अंग्रेजी होगी तो उसी जुबान में कहेगा, आपकी जुबान जो होगी उसमें आप ख्याल करेंगे। तो हर एक गोया ख्याल जो है वो भी किसी न किसी जुबान में होता है। तो ये कुरान शरीफ के अलिफ लाम मीम जो है उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि तब इसका सही वो होगा जिसकी कोई समझ। تو اس زبان قرآن مجید سے بھی میں نے دکھا دیا کہ تو اس میں بتایا گائے کے متعلق, اور دوسرے یہ کہ یہ انسان کی ضمیر کو روشن کرنے کے لیے, کھودنے کے لیے, آگے ترقی دینے کے لیے یہ ساری باتیں ہیں. اچھا, اب مسلمانوں کا عقیدہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عام طور پر ماضی لوگ کہتے ہیں جو کچھ ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دور کرم سے پہلے لکھ دیا, جو آپ نے کرنا تھا کرنا ہے وہ سب کچھ لکھا ہوا پہلے سے, اس کے مطابق آپ کرتے چلے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ آریوں کے ساتھ بحث تھی, سید محمد اعظم صاحب امروہی جو وہ دوسرے ہمارے کہلاتے ہیں اسلیٹ دماغ میں, انہوں نے مجھے بلایا وہاں بحث کرنے کے لیے آریوں سے, امروہی نے. امروہی میں جب بحث کرنے کے لیے تو وہاں اور بھی مولوی آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ مولوی ثناء اللہ کو ہم کھڑا کریں گے, ان کو نہیں کھڑا کریں گے, یہ مرزائی ہے قادیانی. اچھا, اب انہوں نے اس کو ثناء اللہ کو کھڑا کر دیا بحث کرنے کے لیے. تو ثناء اللہ کو کھڑا کیا تو ثناء اللہ جب انہوں نے آریہ نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آدم جو تھا اس سے اس کی بیوی پیدا ہوئی, تو باپ بیٹے بیٹی ہو گئے, تو دونوں کا نکاح ہو گیا, تو آپ کے اندر میں باپ بیٹی کا نکاح جائز ہو گیا, باپ سے بیٹی بڑی نا اس کی پسلی لے کر. اچھا, پھر آگے ان کی اولاد ہوئی تو بہن بھائی کا نکاح ہو گیا, کیونکہ اور تو کوئی تھا نہیں. تو اب وہ کہتا ہے کہ اس کا جواب دو آپ. مولوی ثناء اللہ کہتا ہے میں نے تمہارا سوال ہی نہیں سمجھا, اور ساری دنیا سمجھ گئی اور اس کی سمجھ میں خاک نہ آیا. تو اسی طرح سے وہاں ایک مولوی صاحب تھے دیوبند کے سے بڑے عالمات, وہ کہنے لگے آپ میرے ساتھ بات کریں آگے. تو اب چاہیے تھا کہ وہ اسی مسئلے کو لے کر بیان کرتے. انہوں نے کیا شروع کیا, پون گھنٹہ تقریر کی کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ کرتا کراتا ہے خدا تعالیٰ کا کیا. انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے, جو کوئی کرتا کراتا ہے خدا کرتا کراتا ہے, اگر نیکی کرتا ہے تو خدا کراتا ہے, بدی کرتا ہے تو خدا کراتا ہے. وہ کھڑا ہوا پون گھنٹے کا جواب اس نے دو منٹ میں دے دیا. انہوں نے کہا کہ خدا ہی بیٹ میں جائے, خدا ہی دولت میں جائے. جب انسان کو اختیار ہی کچھ نہیں ہے, جو کوئی خدا کراتا ہے تو وہی جائے بیچنے دولت میں, ہمیں تو دے دے. تو اس لیے یہ گویا ان کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ انسان مجبور محض ہے, عام مولویوں کا یہ عقیدہ. تو یہ عقیدہ ایسا ہے قرآن شریف میں آتا ہے کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی ہے, آنکھیں دی ہیں, کان دیے ہیں, زبان دی ہے, سب کچھ دیا ہے, اور پھر اس کو سوچنے سمجھنے کا اختیار دیا, چاہے تو ایک کام کرے چاہے نہ کرے. عیسائی مذہب میں اور اسلام میں ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ عیسائی مذہب کہتے ہیں انسان بائی نیچر برا ہے, کیوں آدم نے گناہ کیا اس کی اولاد میں وہ گناہ آ گیا. اب کوئی شخص جو ہے وہ نیکی کر نہیں سکتا بلکہ فطرتاً گنہگار ہے. تو اگر فطرتاً گنہگار ہو تو اس کو گنہگار کہہ نہیں سکتے, اس کی وجہ یہ کہ فطرت باقی بنائی ہوئی ہے. جو کچھ وہ کرے گا اپنی فطرت کے مطابق کرے گا وہ تو ثواب ہوگا, گناہ تو نہیں نہ ہو سکتا. تو اس لیے ان کا جو عقیدہ ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو آدم کی وجہ سے گناہگار کر دیا گیا, یہ بات غلط ہے. اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ زبان جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے قرآن شریف میں آتا ہے, وہ اللہ نہ آدم الاسماء اللہ, اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اسماء سکھا دی. تو اب آگے مقابلہ ہوتا ہے فرشتوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کہا, سکھا کر فرشتوں کو کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ, انہوں نے کہا جی ساتھ ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں, ان کو اس کو بتا دیا, پڑھا دیا طوطے کو, تو ہمیں پڑھاتے تو ہم نہیں پڑھا بتا دیتے, تو ہم تو نہیں بتا سکتے, وہ بتا سکتے ہیں جو آپ نے بتایا, ہم اس کے علاوہ نہیں بتا سکتے. تو یہ بات غلط ہے. اس طرح سے خدا تعالیٰ نے آدم کو نہیں پڑھایا, بلکہ آدم کے اندر قابلیت رکھی ہے کہ وہ الفاظ ایک چیزوں کے نام رکھ سکے. جب یوں نہیں پڑھایا کہ یہ یاد رکھو یہ مولی ہے, یہ گاجر ہے, یہ ٹیلا ہے, یہ گوشت ہے, اس طرح سے نہیں پڑھایا, بلکہ یہ اس کے اندر یہ قابلیت رکھی ہے کہ وہ ہر چیز کا نام رکھ سکے. اور یہ اتنی بڑی قابلیت ہے کہ 2.5 لاکھ مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر, ہر قسم کو ایک الگ نام دینا اتنے کمال کی بات ہے. 2.5 لاکھ الگ الگ ان مچھلیوں کو دیکھ کر اس میں یہ فرق ہے, اس میں یہ فرق ہے, اس میں یہ فرق ہے, ہر ایک کو الگ الگ نام دینا کتنی بڑی قابلیت کی بات ہے جو انسان کے اندر رکھی ہے. تو علامہ آدم علیہ السلام کے معنی یہ ہیں کہ آدم کے اندر انسان بنی آدم کے اندر चीजों के नाम रखने की काबिलियत अच्छी थी
और
अहलियत अच्छी थी। वहां आदम से आदम मुराद नहीं बल्कि जुबान जो है, जैसे मैंने आपको बताया, आहिस्ता आहिस्ता नहीं, पहले पूरी जुबान किसी को भी नहीं सिखाई गई। तो ये अलिफ लाम मीम के माने याद रखने की चीज है कि इसके माने जो है वो ये हैं, गाय है कि जिसको जो गया लाम ताजा लामिद है, वेपर लाम इब्रानी जुबान में लामिद है, लामिद के माने वो छड़ी जिसके साथ बैल को हंका जाता है। और मीम जो है मीम मूम मा ये सब पानी के नाम, तो वो गया गाय है जिसको छड़ी के साथ हांकर चलाया जाता है खेत फाड़ने के लिए और पानी देने के लिए। तो ये अलबकरा हो गया ना, और मुराद उसे कुरान शरीफ ने जो लिया है वो जमीर का खोजना है, इंसान की रूह का, दिमाग का, कि उसके अंदर आगे इलम जो है वो आता चला जाए और उसकी तरक्की करता चला जाए। अच्छा, अब रह जाती है ये कि ये लोग जो है ये गोया मसलन लफ्ज रब था ना कि आहिस्ता आहिस्ता खुदा ताला ने दुनिया को बनाया, तो इसमें मौलवी लोग जो है वो कहते हैं कि खुदा जो है वो जिसको कौन कहता है तो एक चीज बनकर खड़ी हो जाती है। तो अब इसमें कहते हैं इन अल्लाह कुबल शहन कदीर, कि अल्लाह ताला हर बात पर कुदरत रखता है। अगर हम ये कहें कि वो इस तरह से नहीं बनाता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक चीज को बनाता है, तो हम इसमें खूबी समझते हैं, वो इसमें खूबी समझते हैं कि खुदा ने कुल कहा और सब कुछ बनकर तैयार हो गया, खड़ा हो गया। अब आप गौर कीजिए कि अगर खुदा ताला कुल कहता और हमने शाम को जमीन में एक बीज डाला, सुबह को देखा तो 30-35-50 फुट का एक दर्द खड़ा था, उनसे पैदा हो गया। मगर मैं जिसे ये कहता हूँ कि वो पैदा इस तरह नहीं होता बल्कि यूं होता है कि आहिस्ता 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 नामालूम तौर पर बढ़ता चला जाता है और एक ये नीतम बड़ा खड़ा हो जाता है। उसी वजह यह कि इस तरह से इंसान इल्म हासिल करता है। अगर कुल से पैदा हो जाए तो कुछ इल्म ना होता, सिवाय इसके कि हम ये समझे कि बस एक मोहिदा हो गया, विशोभदा हो गया, निकल कर इतना दरख खड़ा हो गया। लेकिन जिस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन में एक अपनी शाख नीचे की तरफ भेजता है जड़ और एक ऊपर की तरफ, ऊपर से वो अलग अपनी खुराक लेती है, जड़ जो है वो नीचे जमीन में से खुराक लेती है, आहिस्ता 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 वो बढ़ता चला जाता है। ये तरीका है जो खुदा ताला ने रखा है। इस तरीके में गोया तीन बातें हैं, खुदा ताला हर चीज को खूबसूरत बनाता है, पूरी हिकमत बनाता है और उसके अंदर गोया जो फायदे होते हैं वो रखता चला जाता है। अब रह जाता है मसलन एक चीज है बनाई है उसे, पूरी हिकमत अगर न बनाए तो गोया फिर उसको आगे चलकर कोई फायदा ना होगा उस चीज का। तो ये रहमा नियत के अंदर एक चीज आती है, रहमा नियत के माने हैं बगैर गोया किसी कोशिश के देना, लेकिन दूसरे माने रहमा नियत के हैं दिल हिकमत बनाना। दिल हिकमत बनाना, अब आप और चीजें कर रहे हैं
चलो तुस जिन्नी देर शेव करते हो फिर नाना करी जाने से बाहर निकल आ रही है। बैटरी है वो पर
और बात याद रखने के खातिर वो ये है कि तौहीद जो है वो दो तरह की है। एक तौहीद है कि एक आदमी कहता है मेरा खुदा है और दूसरा आदमी कहता है खुदा एक ही है, इन दोनों में फर्क है। जो आदमी कहता है मेरा खुदा एक है वो इस बात का इकरार करता है कि दूसरों के दूसरे मेरा एक है तो वो मेरा ही है, और जो कहता है खुदा एक ही है वो ये कहता है कि दुनिया में और किसी का कोई खुदा नहीं, बस एक ही है जिसने सारी दुनिया को पैदा किया है। तो इसको कहते हैं मोनोथीम, और वो दूसरी जो है उसको कहते हैं हिकमत। यानी अपने से खुदा मानना, ये जो है जिसको इधर जिसको बोया, इसका मतलब ये होता है कि अपने आप को खुदा का बेटा समझना। हमारा खुदा एक है, वो हमारा ही है, दूसरों का नहीं है, तो वो बेटे वगैरह खुदा के। तो खुदा ताला जो है वो गोया सारी दुनिया का एक है, उसी ने काफिरों को पैदा किया, उसी ने सबको पैदा किया। अब ये कुरान शरीफ के जो आपने पढ़ी है पहली आज, इसने एक लिख रखा है कि खुदा ताला जो है वो लोगों के दिलों पर मोहर लगा देता है और उनके कानों पर पर्दे डाल देता है, आंखों पर पर्दे डाल देता है। ये आर्या ने एतराज किया रामचंद्र ने मिलकर, तो मैंने उसका ये जवाब दिया कि देखो बाहर चूड़ी निकला हुआ है, धूप निकली हुई है, एक आदमी अगर अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और काले पर्दे तान दे तो दीवार रोशनी जो बाहर की है वो दीवार फाड़ कर अंदर नहीं आ सकती, ठीक है ना। इसी तरह से खुदा ताला ने हिदायत भेजी है, जो लोग उस हिदायत को नहीं मानते, अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं, उनको उनका खुदा ताला जो है गोया वो खुदा ने ऐसी रोशनी नहीं बनाई जो अड़कर आ जाए, दीवार फाड़कर आ जाए। तो इसलिए गोया कसूर उनका है, इन लजीन कफर, उन्होंने कुफर किया। कुफर का मतलब यह कि हम नहीं सुनते, और फिर अभी कहा गया कि देखो भी न सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, भी होगा देखा जाएगा। तो ऐसे लोग जो है वो लोग हैं जिनके दिलों पर मोर लग गए, अपना भी नफा नुकसान नहीं सोचते। तो दुनिया के अंदर गोया इंसान की फिक्रत ये है, बात बातों पर वो हंसता है, बात पर वो रोता है, और इससे पहचाना जाता है कि ये आदमी किस किस्म का। क्योंकि बाद लोग अच्छी बात पर होते हैं, बाद लोग बुरी बातों पर हंसते हैं। उनकी खुशी जो होती है उस बात में होती है जिसको वो पसंद करते हैं, और बाद लोग उन बातों पर रोते हैं जो वाकई बुरी होती है, और बाद लोग उन पर रोते हैं जो अच्छी होती है। तो ये वो हंसना और रोना भी इंसान के कैरेक्टर की एक दलील है कि आप पहचान सकते हैं ये आदमी अच्छा है कि बुरा। इस बात पर इसको हंसी आती है, इस बात पर इसको रोना। और दूसरा टेस्ट ये होता है कि इंसान किस किस्म के शेर याद करता है। जो आदमी जिस किस्म का होगा उसी किस्म के शेर याद करेगा, उसी किस्म की बातें याद रखेगा, दूसरी किस्म की नहीं याद करेगा। तो ये जो है इंसान के कैरेक्टर छोड़ना और हंसना ये जो है, और बात करना जो है उससे पता चल जाता है कि इंसान की इंदर लजीना कफर। कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं मानेंगे। फिर उनको कहा गया देखो इसका अंजाम खराब होगा तुम्हारे लिए, ये हो जाएगा देखा जाएगा, हो जाए कोई परवाह नहीं हमें। तो वो लोग हैं जिनके गया दिलों पर तारा लगा हुआ है या आंखों पर, वो देखते नहीं है, अपना नफा नुकसान नहीं सोचते। अल्लाह ताला ने अकल दिया है, दिमाग दिया है, सोचे तो ये गया उनके फायदे के। तो ये जवाब मैंने जवाब उसको रामचंद्र को दिया ना, बड़ा खुश हुआ, कहने का और दोहराया उसने, कहने का आपने बड़ा सुनवा। यानी रोशनी ऐसी नहीं बनाई खुदा ताला ने कि दीवारें फाड़ कर अंदर आ जाए, जो अपना घर के दरवाजा नहीं खोलता, बस अंदर तरक्की हो जाए।
जवाब दिता हो जरा सनाउला पूछा।
देखो बात यह है, कुरान शरीफ में ये आता है कि हमने इंसान से उसके अजवाज को बढ़ा, ये अजवाज बनाना जो है उसकी जिंस। इंसान अगर इंसान है तो औरत भी इंसान है, इसी इंसान की जिंस है ना, वो अलग नहीं है। तो ये मेन जो आता है वहां जिंस का है, ये नहीं कि उसमें से उसको निकाल। मेरा उस्ताद था जो यहूदी जिसना ने इब्रानी जबान पढ़ी, वो कहने लगा कि खुदा ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए पहले एक बीवी बनाई। उन्होंने कहा मैं तेरे पास खिदमत करूंगी, वो कहने लगा नहीं मैं करूंगा। दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, तो अल्लाह ताला ने उस बीवी को मारकर समुद्र में निकाल और उसके लिए हवा बनाई। हवा ने फरमान बरदारी की, उन दोनों की शादी हो गई। अब कहने लगा वो जो जिसको निकाल दिया था ना सौकट, वो आती है जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, कहना वो मारती है आकर तो रोता है। तो फिर हमारे यहाँ एक दुआ है, वो हमने अपने दरवाजे पर लिखते हैं, तो ये नहीं रोता नहीं है बच्चा। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा भी बात ये है, ये रोना जो है ये जिंदगी की दिशा। माँ के पेट में ना वो रोता भी अगर है या कुछ है, तो माँ के जिसम में उल्व जो कोई खाता है पीता है सांस लेता है वो माँ का ही होता है, माँ के जीवन से। जब वो बाहर आ गया अब उसकी अलग है, तो अलग उस वक्त के फेफड़े उसके फूटते नहीं है जब तक वो रोता। ये फेफड़े खोलने के लिए रोना है। मगर इस पर जो सीखा है, एक लड़की जो थी बड़ी रोती रही, बड़ी रोती रही, देर के बाद उसको माँ ने पूछा रोती क्यों थी, आदमी ने तो कहा था कि फेफड़े ताकतवर होते हैं। तो आदमराम जो थे एक दिन वो कहीं शहर के लिए गए, तो बड़ी देर में आए। अब्बा ने कहा तुम देर से आए हो, क्या लगा ऐसी देर में, कोई तेरे लिए खुदा ने दूसरी बीवी बनाई है जिसकी वजह से तू देर कर किया। उन्होंने कहा नहीं, कसम दिखाई, सब कुछ किया, अब्बा ने न माना। आखिर वो थका हुआ था बेचारा, लेट गया। उसने कहा कि उसकी पसलियां गिरती हुई, अगर कम हुई तो जरूर एक के लिए दूसरी बीवी बनी है। तो उनकी पसलियां तो ठीक थी पसलियां उसकी, मगर फिर भी उसको यकीन नहीं आया, अरे कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। ये कहानियां इन लोगों ने बना रखी है, इस तरह से असल बात जो है वो यही है। और ये इंसान को तरक्की देने के दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए तीन जो है सुनने में एक होती है अथवा, एक है अतल पहलू और एक है सिंह का पहलू और एक है मॉरल पहलू, तीन पहलू होते हैं। तो आप हर कामयाब आप देखिए कि बारिश आसमान से आती है, पानी की जमीन नहीं मौजूद है, यहाँ क्यों नहीं सब कुछ मिल जाता, उठा ऊपर उठाना, बादल बनाने, फिर बरसाना, ये तो ऐसी चीज है कि एक चीज को जो यहाँ मौजूद है उसको पहले ऊपर मिल गया फिर आया। मगर जो लुत्फ आता है ऊपर से बारिश के आने का, वो जमीन अगर नीचे नीचे बरसों को ले जाता है कुछ नहीं मिला। अब आप देखिए बारिश जब बादल आता है तो नीच भी खुश होती है, तो उसके अंदर एक हुसन भी है और हिकमत भी है। इस तरह से पानी को खुदा तला बगैर मशीन के बगैर लेकिन उठाता है और फिर उठाता है। बल्कि उसके अंदर एक और चीज है कि बारिश जो है ना ज्यादा होती है ना कम होती है, ये जुदा बात है कि कभी कभी ऐसा होता है। मगर उसका एक तरीक है कि अगर बारिश ही होती रहे तो आप जानते हैं दुनिया के अंदर रहना मुश्किल है। तो इसलिए हर चीज का एक अंदाजा है, उसके अंदर एक हिकमत है। इन अल्लाह कुल्ले शान कबीर के माने ये हर चीज पर अल्लाह ताला कादिर है, मगर दीन हिकमत ये उसके साथ शर्त है। अगर हिकमत ना हो तो गोया उसकी कुदरत का फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो। तो इसलिए ये लोग कहते हैं इन अल्लाह कुल्ले शान कबीर, खुदा झूठ बोल सकता नहीं हो सकता, हर चीज पर कुदरत रखता, उनको इतना पता नहीं बेटू फोन करके झूठ बोलना कुदरत नहीं बल्कि कमजोरी है, या तो इलम की कमजोरी है या वैसे डरता है। दो ही बातें होंगी ना, तो खुदा में दोनों चीजें नहीं। क्या कहते हैं कि खुदा और उसने पंडित में, आप पंडित में नहीं, मेरे साथ भी बैठ थी और चनाजला के साथ भी बैठ थी, तनासू पर बैठ थी, तो उसके साथ तो उसने कहा पहले गुलाम के अंदर में देखा कि दो हम बैठे हैं, आप दोनों में से पहले कौन खड़ा होगा, तो चनाजला कहेंगे पहले मैं खड़ा होगा, कहेंगे आप करेंगे तो आपके मुकाबले पर मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने वो नहीं आना चाहता। तो उन्होंने टाल दिया, अब चुनाव लग खड़ा हुआ उसके साथ तनासुब का बहस करने की बजाय उनका एक सवाल अपनी तरफ से करके उसका जवाब देना शुरू कर दिया। कहने लगे आर्या लोग पूछा करते हैं खुदा अपने जैसा खुदा बना सकता है या नहीं बना सकता, तनासुब के साथ इसका कोई तरह की, मगर यूं ही अपने तरह से आज मैं ऐसा जवाब दूंगा कि आर्य समाज का मंदिर हिल जाएगा, दीवारें हिल जाएंगी, ये होगा वो होगा, और कभी नहीं ये इतराज करेंगे। उन्होंने कहा क्या करेंगे, जवाब ये है खुदा अपनी जैसा खुदा बना सकता है, मगर जो बनेगा वो कहेगा मैं तेरे दर्शन। तो पंडित खड़े हुआ, उन्होंने कहा वाह 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 वाह, मुसलमानों का खुदा बना हुआ भी हो सकता है। अगर झूठा भी हो सकता है, क्यों, अगर अपने जैसा बनाया तो वो कहता ना तेरे जैसा नहीं, या तो अपने जैसा बनाया नहीं।